శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ్ హనుమానికి, శ్రీ శ్రీ పంచతత్వకి, శ్రీమతి తులసి మహారాణికి, సమవేద గౌర భక్త వృందకి నితాయ గౌర ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధశ జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిళితం ఏనా తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపాకదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగరజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతాం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. పాంచాకల్పతరూభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఆగే ఆ సత్తే యహా ఇదర్ ఆ జాయే, ఖాళీ స్పేస్ హై, ఆగే ఆగే బఢియే. తో ఆజ్ హమ్ విశేష్ రూప్ సే కుచ్ సమయ్ కే లియే చర్చా కరేంగే శ్రీమతి తులసి మహారాణి కే బారే మే. వృందాయే తులసి దేవ్యాయే ప్రియాయే కేశవశ్య చ కృష్ణ భక్తి ప్రదే దేవి సత్యవతే నమో నమః. తో శ్రీల ప్రభుపాద్ కి అహేతుకి కృపా హై సారే జీవో కే ఉపర్. కృష్ణ కో కహా జాతా హై కరుణా కే సాగర్, హే కృష్ణ కరుణా సింధు. జబ్ భగవాన్ కే అందర్ ఏక్ కరుణా కే గుణ హై తో జో వ్యక్తి జితనా అధిక్ భగవాన్ సే ఆసక్త్ హోనే లగ్తా హై उतने ही मात्रा में कृष्ण के जो दिव्य गुण हैं उस व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं. भगवान के अंदर असंख्य के क्वालिटीज हैं भगवान की, तो उनमें से कई जो गुण हैं वो भक्त के हृदय में भी प्रकट होने लगते हैं. तो उसके उदाहरण है श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के अंदर ये जो गुण है, करुणा के सागर, करुणा सिंधु, दीन बंधु, ये सारे गुण हमें किसमें दिखते हैं? श्रील प्रभुपाद में. श्रील प्रभुपाद ऐसे वैष्णव या ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने अपने स्वयं का विचार नहीं किया है, क्योंकि भगवान के जो विशेष भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके अनेक अनेक गुण हैं. उनमें से एक गुण है कि वो अपने लिए नहीं जीते, वो किसके लिए जीते हैं? सदैव दूसरों के लिए जीते हैं. उनका जीवन ही दूसरों के लिए है. ये जगत में हम देखते हैं, बचपन से हमें यही शिक्षा मिलती है, खुद के लिए जीना. लेकिन वास्तव में ये इतना ग्लोरियस या ये इतना महत्वपूर्ण जीवन नहीं है, आनंददायी जीवन नहीं है. असली आनंददायी जीवन क्या है? जीवन का असली आनंद है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं और उसकी प्रशंसा स्वयं कृष्ण अपने मुख से श्रीमद् भागवतम में करते हैं. जब भगवान कृष्ण गव्य चराने के लिए जाते हैं गोवर्धन की ओर, बलराम के साथ, आपने पिछली बार सुना होगा। तो वृक्ष पेड़ों को देखकर कृष्ण कहते देखो देखो हे बलराम, ये जो वृक्ष है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको सारी भेंटे अर्पित कर रहे हैं। तो बलराम कहते नहीं नहीं हाँ, ये तो वास्तव में आपके लिए झुक रहे हैं, आपको प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान कहते कि इन वृक्षों के जैसा व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। काटिले ही तरु किछु ना बोला है, चैतन्य चरितामृत कहते हैं काटिले ही, पेड़ को काटोगे किछु ना बोला है, कुछ बोलता नहीं है, बोलता है क्या, कंप्लेन करता है नहीं। तो जो वृक्ष है वो अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं जीता, वो वास्तव में कृष्ण कहते वो दूसरों के लिए जीता है, उसकी छाया है, हाँ उसके फ्रूट्स हैं, उसके पत्ते हैं, टहनियां हैं, शाखा है, हाँ हर चीज वृक्ष की केवल दूसरों के लिए है। तो भगवान कहते कि इस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, तब हम वास्तव में जो दिव्य आध्यात्मिक आनंद है उसकी अनुभूति करेंगे। तो भगवान के भक्तों के पास आनंद का भंडार क्यों है, क्यों वो इतने सुखी रहते हैं? जैसे खोला बेचा श्रीधर के बारे में हम सुनते हैं चैतन्य भागवत में कि जब खोला बेचा श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था, हाँ लेकिन वो निरंतर कृष्ण नाम लेते थे और दूसरों को कृष्ण नाम का संदेश देते थे, और उसी के कारण वो इतने अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते थे क्योंकि उनका चित्त, उनका हृदय, उनका मन कृष्ण में लगा था। किसी का हृदय मन कृष्ण में लगाना उसका अर्थ क्या है, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण के डिवोटीज, कृष्ण का धाम, हाँ कृष्ण से संबंधित चीजों में अपने मन को चित्त को लगाना, वो है हाँ कृष्ण में हमारा मन लगना। तो इसलिए जो भगवान के जो भक्त हैं, भौतिक रूप से देखा जाए कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो दिव्य आनंद है, जो दिव्य आनंद की अनुभूति है, उसकी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं की जा सकती। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो वास्तव में सारे जगत के जीवों की चिंता महान भक्तों के हृदय में होती है और उनका हृदय रोने लगता है। वो सोचते कि मैं इतना अत्यधिक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, ये सारे जीव पागल की भांति भौतिक सुख के लिए तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं भी उनको ये दिव्य आनंद देना चाहता हूं, जो रस मैं आस्वादन कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं, तो वो बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है। भौतिक जगत में जीव स्वार्थी है, एक दूसरे के साथ हम शेयर नहीं करना चाहते नहीं, हम ना गाड़ी शेयर करना चाहते, ना घर शेयर करना चाहते, ना बैंक बैलेंस शेयर करना चाहते, कुछ भी नहीं। हाँ नमे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, क्योंकि हम भूल गए कि हमारा स्वार्थ कृष्ण है। क्योंकि अत्यधिक आनंद क्या है, हाँ शेयर करना दूसरों के साथ, और विशेष रूप से भगवत भक्ति का जो दिव्य आनंद है वो दूसरों के साथ बांटना। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे और वृंदावन में रहकर उन्होंने सोचा उनका लाइफ इतना खुश थे, राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे और वृंदावन जैसा धाम था, कोई चिंता नहीं है, दिन रात भजन करो, कृष्ण कथा करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण चर्चा करो, इससे अधिक आनंदमय जीवन क्या था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिस दिव्य आनंद की मैं अनुभूति करता हूँ, ये सारे जगत के लोग पागल के भांति भ्रमण कर रहे हैं, मुझे उनको ये देना होगा। तो ऐसे प्रभुपाद स्वयं अपने जीवन में कष्ट को ले लेते हैं, इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब क्या है, हमें जबरदस्ती कष्टों को अपने जीवन में ले लेना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए। जैसे कृष्ण के बारे में एक चित्त होकर सुनना भी क्या है, तपस्या है। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं तो भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि विदेशम गम्यते मया भक्ति देवी, भक्ति देवी तुलसी देवी, ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। लेकिन तुलसी देवी क्या है, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने का सामर्थ्य तुलसी महारानी के पास है। तो एक प्रकार से देखा जाए जो भविष्य पुराण वर्णन करता है कि एक समय आएगा मैं विदेशों में गमन करूंगी, कहां जाऊंगी, विदेशम गम्यते मया, जैसे सब लोग चाहते हैं ना विदेश यात्रा, कब हमारा सौभाग्य खुलेगा विदेश की यात्रा करूंगा, लोग सोचते हैं। यहाँ वृंदे देवी या फिर जो भक्ति देवी है वो भी सोचने लगी, तो उनको कौन लेके जाएगा, कौन ले गए, श्रील प्रभुपाद ले गए, क्योंकि भक्तों के पास वो सामर्थ्य है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद भक्ति देवी या तुलसी देवी को पूरे विश्व का भ्रमण करके लेके आए और सारे विश्व में उन्होंने उनको स्थापित किया। वैसे देखा जाए तुलसी महारानी कोई नई चीज नहीं हमारे लिए, बचपन से ही हम देखते हैं कहां घरों के सामने है, इधर उधर तुलसी का पौधा उगता रहता है, हमें थोड़ा सा पता रहता है कि हाँ ये कोई आध्यात्मिक पौधा है, इसको थोड़ा कभी प्रणाम तो पता नहीं, बचपन में कभी तुलसी को तो प्रणाम किया नहीं, लेकिन हाँ कुछ पानी डालते हैं, माता पिता कहते हैं कि पानी डालो बेटा, तो बेटा जाता है मग्गा लेकर पानी डालता है। हाँ इतना ही इनफ है कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्या करना, कृष्ण को आकर्षित करने का सरल उपाय ढूंढना चाहिए। हम कई सारी चीजें सोचते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करना, और उसके लिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा कृष्ण का अटेंशन हमें प्राप्त हो। तो ऐसे भगवान इस जगत में आते हैं, या भगवान आने से पहले ही क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। और वास्तव में हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि तुलसी महारानी की जो चर्चा है करना, तुलसी महारानी के बारे में बोलना या तुलसी महारानी के बारे में सुनना, क्योंकि तुलसी के कई सारे नाम हैं, उनमें से एक है कृष्ण प्रियसी। क्या नाम है, कृष्ण प्रियसी। तो कृष्ण को बहुत सारी चीजें प्रिय है, लेकिन कृष्ण बाकी जो प्रिय चीजें हैं उनको त्याग कर जरूर जाते हैं। इवन कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए, या फिर कृष्ण ये जो लक्ष्मी देवी है वो भी सदैव भगवान के चरणों में लगी रहती हैं, वो भी नहीं चाहते कि कृष्ण के चरण भगवान के चरणों को छोड़ के कहां चले जाओ, लेकिन लक्ष्मी के अपने भक्त होते हैं जो लक्ष्मी की पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं लक्ष्मी का आकर्षण। लक्ष्मी का मतलब क्या है, धनम, लक्ष्मी का मतलब क्या है, धन। तो ऐसी लक्ष्मी देवी को भी कभी कभी भगवान के चरणों को छोड़कर, उनके मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भागना होता है, लेकिन केवल पूरे जगत में एक ऐसी देवी है जो भगवान के चरणों को कभी भी छोड़ती नहीं है, वो कौन है, तुलसी। भगवान के चरण खाली कभी नहीं रहते, भगवान के चरण सदैव तुलसी, और वो तुलसी जिसमें चंदन लगा हो, वो तुलसी भगवान को बहुत अधिक आकर्षित करती है। तो ऐसे तुलसी का जो पत्ता है, पत्र है, भगवान अपने चरणों में धारण करते हैं सदैव। तो कभी कभी लक्ष्मी देवी भी ईर्ष्या करने लगती है, अरे ये तो सदैव लगी रहती है उनकी सेवा में, चरणों में वो बहुत प्रिय है। लक्ष्मी को भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाता है, वो दिव्य ईर्ष्या है, हमारे जैसा भौतिक ईर्ष्या आदि नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति तुलसी महारानी के बारे में चर्चा करता है या सुनता है तो कृष्ण को सर्वाधिक आनंद होता है, कृष्ण का आनंद द्विगुणित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ता है। जब भगवान देखते कि मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है, भगवान को अपना गुणगान इतना अच्छा नहीं लगता, भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों का गुणगान करना। तो तुलसी कौन है, भगवान की बहुत प्रिय भक्त है, उनके कई सारे नाम है, उनमें से एक नाम वृंदा है। क्या नाम है, वृंदा, वृंदावनी, पुष्प सारा, ऐसे कई सारे नाम है। तो ये भगवान इतना अधिक प्रीति रखते हैं तुलसी से कि भगवान का जो अपना निजी ग्रह है, भगवान का अपना निजी धाम है, उसको भगवान ने उस धाम का नामकरण सदैव याद रखने के लिए अपने प्रिय डिवोटी को सदैव याद रखने के लिए भगवान ने अपने धाम का नाम क्या रखा, वृंदावन। इतना भगवान को वृंदा देवी या तुलसी के प्रति आसक्ति है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये सार है भगवत भक्ति में जीवन का, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो सार क्या है, एवे भक्त जना पार्थ नमे भक्तांच ते जना। आदि पुराण में अर्जुन को प्रश्न कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है हे अर्जुन कि मैं आपका भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, नमे भक्तांच ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। लेकिन अर्जुन को कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति ये कहे कि मत भक्तांच ये भक्तास्ते मैं भक्त तमामतः, कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, तो कृष्ण कहते ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त है। और इसी की शिक्षा देने के लिए भगवान ने भगवद गीता और श्रीमद भागवतम को बोला है। और उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा आमार भक्तेर पूजा आमा है ते बड़ा, मेरे भक्त की जो पूजा है वो मुझसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए पार्वती ने प्रश्न पूछा शिव जी को, पार्वती बहुत अच्छी स्त्री है, भगवान की, भगवान शिव या शिव जी की बहुत अच्छी भार्या है, वो हमेशा प्रश्न पूछती रहती है क्योंकि वो सुनती रहती है प्रश्न कथा। और पति भी इतने एक्सपर्ट है, कौन है उनके पति, शिव जी है। शिव जी कोई बिजनेस सारे कार्य उन्होंने छोड़ दिया है, शिव जी बस बैठे रहते हैं और उनकी पत्नी होती है उनके पास और सदैव वो कृष्ण के बारे में बोलते जाते हैं। शिव जी के पास कितने मुख है, पंच मुखे महादेव राम राम हरे हरे, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ब्रह्मा के पास चार मुख है जिनसे वो कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, और महादेव शिव जी के पास पांच मुख है जिनसे वो राम राम हरे हरे भगवान की महिमा का गान करते हैं। तो एक बार पार्वती देवी पूछती हैं कि आप बताइए कि कौन सी आराधना श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी आराधना किसकी है। तो भगवान कहते हैं आराधना नाम, या शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम, सारी आराधनाओं में विष्णु या कृष्ण की आराधना श्रेष्ठ है। और वो कहते हैं तस्मात परतरम देवी तदी आनाम समर्चनम, हाँ भगवान की आराधना सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन रुको रुको हे देवी हे पार्वती रुको, उससे आगे भी एक उत्तर है। वो कहते कि क्या है, कहते तस्मात परतरम देवी तदी आनाम समर्चनम, ये टेक्निकल वर्ड एक शब्द आपको याद रखना होगा। शिव जी ने कहा उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तदीय, क्या है शब्द तदीय बोलिए तदीय, हाँ ये तदीय वस्तु, तदीय तदीयों की जो आराधना है वो भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। तो ये तदीय क्या है, तदीय का मतलब है कि जो भगवान से संबंधित है, भगवान जिनसे प्रीति रखते हैं, भगवान को जो प्रिय है, उन वस्तुओं की उस स्थान की उस व्यक्ति विशेष की जो आराधना है पूजा है वो भगवान की आराधना से भी सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अर्चयित्वा तु गोविंदम तदियान ना अर्चयेत तु यः, कि यदि कोई व्यक्ति गोविंद की आराधना कर रहा है लेकिन गोविंद के जो प्रिय है, गोविंद जिनसे प्रेम रखते हैं, गोविंद जिनसे संबंधित है, ऐसे भक्तों की या ऐसे व्यक्ति विशेष या स्थान की पूजा कोई नहीं करता है, उनकी आराधना नहीं करता है, न स भागवतो गिरह केवलम दाम्भिक स्मृतः, तो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं कहलाता, वो भक्त कदापि बन नहीं सकता, वो निम्न क्लास का भक्त रहेगा जिसको कहते हैं कनिष्ठ। हाँ तो भगवान कहते हैं वो केवल दिखावा कर रहा है भक्ति का, धाम्भिक है कि केवल गोविंद की आराधना कर रहा है लेकिन गोविंद जिनसे प्रीति रखते हैं संबंध रखते हैं उनकी आराधना नहीं करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, कि मैं किसकी आराधना करता हूं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, मैं तो ब्रजेश तनया ब्रज के जो ईश है नंद महाराज उनके जो पुत्र है उनकी मैं आराधना करता हूं, और उनकी आराधना के सब केवल उनकी नहीं कर रहा हूं बल्कि जैसे कृष्ण जिस धाम में निवास करते हैं वो धाम की भी मैं क्या करता हूं, आराधना करता हूं। तो ये भावना जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी, गोविंद से संबंधित वस्तुओं की व्यक्ति स्थान की हम आराधना नहीं सीखेंगे तो हम भक्त कदापि नहीं बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत शास्त्रों में कहा गया है। तो तदीय वस्तु क्या है? शास्त्रों में चार चीजों को तदीय कहा गया है। तदीय का मतलब समझ में आया आपको या फिर से समझाओ? तदीय कौन बता सकता है? तदीय का मतलब क्या है?
भगवान से संबंधित या जो भगवान को प्रिय है।
हाँ, भगवान से संबंधित या भगवान जिनसे प्रीति रखते हैं उनको तदीय कहा गया है। तो शास्त्रों में चार चीजों को तदीय कहा गया है। भागवत तुलसी गंगा ये भक्त जने, चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही चारी सने। तो चार चीजें हैं जिनकी आराधना कृष्ण करने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। भगवान कहते हैं भागवत तुलसी गंगा ये भक्त जने। क्या है? भागवत श्रीमद् भागवतम, दूसरा है तुलसी महारानी, तीसरा है गंगा और चौथा है भक्त जने। हाँ, तो ये चार चीजें, चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही चारे सने। कृष्ण अपने आप को प्रकाश विग्रह, प्रकाश विस्तार के रूप में, इन चार चीजों के रूप में कृष्ण सदैव प्रकट रहते हैं। ये चार चीजें जब से प्रकट हुई है तब से पूजनीय है। भगवान की जो मूर्ति होती है, विग्रह होता है, जब तक शुद्ध भक्त उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता तब तक उनकी पूजा मान्य नहीं है। हाँ, जब तक शुद्ध भक्त, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है ऐसे नहीं कि कोई भी मूर्ति उठाई और पूजा शुरू कर दी। हाँ, मूर्ति जब वो मूर्ति है, विग्रह है, उसमें जो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को आह्वान करते हैं कि आप आइए और इसमें निवास कीजिए ताकि हम आपकी आराधना कर पाए, आप उसको स्वीकार कीजिए, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं अपने भक्त के वश में और फिर उस विग्रह में, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। लेकिन ये जो चार चीजें हैं ये कृष्ण का ही विग्रह है, कृष्ण का ही, कृष्ण से अभिन्न है। चार चीजें कौन सी है? भागवतम, तुलसी, गंगा, डिवोटीज, भगवान के जो भक्त हैं। ये चार चीजें भगवान से अभिन्न है, इसलिए हम रोज सुबह गाते हैं साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे। साक्षात हरि है, हाँ, हरि के समान है। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते हैं या रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि तदीयाना तुलसी का जो आराधना है ये चारों में श्रेष्ठ है। हाँ, ये जो चार है उनमें तुलसी का जो आराधना है, हाँ, वो तदियों में सर्वप्रथम किसकी आराधना करनी है? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं तुलसी की आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण इन चार रूपों में इस जगत में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान क्यों इन रूपों में प्रकट होते हैं? क्योंकि भगवान सदैव चाहते हैं कि हमारे जैसे जीव उनके पास वापस आ जाए और निरंतर सुख की अनुभूति करे। तो इसलिए भगवान तुलसी के रूप में विशेष रूप से अपना विस्तार करते या प्रकट हो जाते हैं। और इनको कहा गया है वृक्षा वृक्षार्चा अवतार। क्या कहा गया है? वृक्षार्चा अवतार। भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा कि ये वृक्षा वृक्ष के रूप में है जो तुलसी महारानी है। तो इस प्रकार से जो तुलसी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमने बचपन से ही उनके संपर्क में आए हैं, बचपन से कुछ ना कुछ जानते हैं तुलसी के बारे में, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं। तो जब हम भगवत भक्ति के कार्य करते हैं तो हमें हमेशा लालयत होना चाहिए और जानने के लिए। कोई भी चीज हम करते तो क्यों करें? किसी ने कहा आपको तुलसी की पूजा करो, क्यों करना है? गो इन डिटेल और बताओ, विस्तार से मैं जानना चाहता हूं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने ये तुलसी पूजा हमें दिन में दो बार दी है, सुबह उठते क्या करो? तुलसी की आराधना करो, शाम को भी तुलसी की आराधना करो, क्योंकि तुलसी के पास वो सामर्थ्य है। तो तुलसी, शास्त्र कहते हैं इस जगत में तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। वो चीजें हमारे आसपास, लेकिन उनका संग प्राप्त करना, उनका लाभ प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन है, इसलिए वो हमारे लिए दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ संगति सताम, दुर्लभ हरि भक्ति च संसार संसार नाव पाति नाम। वो कहते कि ये जो संसार सागर है इसको पार करना वैसे बहुत कठिन है। इस संसार सागर में जो जीव पड़े हुए हैं उनके लिए तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। एक है दुर्लभ है तुलसी सेवा। किसकी सेवा दुर्लभ है? तुलसी की सेवा। अभी तुलसी है हमारे पास लेकिन फिर भी सेवा करने की भावना हृदय में नहीं है। हम अपनी सेवा से हमें फुर्सत नहीं है। हाँ, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, निद्रा वर्षे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। जो रात है मैं सोने में गवा रहा हूँ और जो दिन मिला उसमें अपने आप को सजा रहा हूँ। कैसे दिन भी चला गया रात भी चली गई। हाँ, तो हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है। इसलिए जो जीव है बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली है कि भगवान के जो महान भक्त उनके सामने है तुलसी के रूप में, उनकी सेवा करने के उनके पास कोई इच्छा नहीं है। तो दुर्लभ है तुलसी सेवा। इस संसार में तुलसी की जो सेवा है वो दुर्लभ है। और दूसरी चीज क्या है? दुर्लभ संगति सताम। बहुत दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना। हाँ, इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए बहुत पूर्व सुकृति की आवश्यकता है, जिनके कारण निरंतर ऐसे महान भक्तों का संग हमें मिलता है। तो भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, तुलसी की सेवा बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ हरि भक्ति। भगवान की भक्ति क्या है? दुर्लभ वस्तु है। बाकी ये इस जगत में सारी चीजें सुलभ हो सकती हैं। हाँ, आपको धन मिल सकता है, गाड़ियां मिल सकती है, पोजीशन मिल सकता है, आप बहुत फेमस हो सकते हो, लेकिन ये तीन चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तुलसी को हमें कोई साधारण वृक्ष की तरह लेना नहीं चाहिए। प्रभुपाद कुत्ते को बहुत डांटते थे। प्रभुपाद ने कहा, कुत्ता ऐसा चीज है, हाँ, उसका उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सोच बूझ नहीं है। तो प्रभुपाद डांटते थे तुलसी से संबंधित कुत्ते को कई लेक्चर्स में। तो वैसे ही जो व्यक्ति तुलसी के महानता से अवगत नहीं है, उनकी अवहेलना करता है, तुलसी को नेग्लेक्ट करता है, तो उसकी बुद्धि किसके समान है? कुत्ते के समान है, शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो तुलसी है ये विशेष है। तो तुलसी कौन है? कौन है तुलसी? भगवान की क्या है? अंतरंगा शक्ति है। अभी कई चीजें बोली जा सकती है तुलसी के बारे में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या बताऊं। हाँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि तुलसी की कुछ विशेषताएं और तुलसी के संपर्क में आने से कितने लाभ है हमें, उसकी चर्चा मैं सोच रहा था करूं। तो तुलसी, पहले तो ये जानना चाहिए कि ये तुलसी है कौन। ये केवल पौधा नहीं है, ये तुलसी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी है, श्रीमती राधिका है। तो इस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है जब अपना विस्तार करती है इस जड़ जगत में, तो वह तुलसी का रूप धारण करती है। तो ये तुलसी वृक्ष के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रकट हो जाती है। तुलसी का मतलब है, शास्त्र कहते हैं, पुष्पेशु तुलनापेश नासित देवेशु वामुने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी साच कीर्तिता। कि ये तुलसी, तुलसी का मतलब है कि जिससे जिसकी किसी और के साथ तुलना नहीं की जा सकती, उसको क्या कहा गया है? तुलसी कहा गया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा पुष्प नहीं है जो तुलसी का तुलसी की बराबरी कर सकता है, तुलसी की मंजरी की या तुलसी पत्र आदि की। भगवान कहते कोई व्यक्ति हजारों हजारों पुष्प अर्पित करे मुझे, मैं उससे इतना अधिक प्रसन्न नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र मुझे अर्पित करता है तो मैं इससे संतुष्ट हो जाता हूं। हाँ, तो ब्रह्म भगवत पुराण आदि पुराणों में वर्णन आता है कि ये जो तुलसी है भगवान की जो भारिया लक्ष्मी, ये किसका मोबाइल है, किसका मोबाइल है, ऊपर छूट गया है। तो जो तुलसी देवी है वो लक्ष्मी की लक्ष्मी है साक्षात। तो एक बार भगवान का जो धाम है वैकुंठ, वहां भगवान की तीन भार्या है, सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी। तो एक बार सरस्वती को बहुत चिंता होने लगी कि ये जो भगवान है वो मुझसे आदि गंगा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो वो सरस्वती बहुत गुस्से में आ गई। अभी दो तीन पत्नियां आए तो झगड़ा होगा ही नहीं, एक है तो फिर नो प्रॉब्लम। तो लेकिन वहां वो सोचने लगी ये भगवान है, कृष्ण है या विष्णु है, वैकुंठ में तो नारायण निवास करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मुझसे अधिक गंगा से इतना प्रीति रखते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया। किनको गुस्सा आया, सरस्वती। और वो बोलने लगी भगवान के बारे में, इतना बोलने लगी। तो वहां लक्ष्मी भी थी, लक्ष्मी बहुत शांत है। लक्ष्मी देवी ने उनके जो कड़े शब्द थे उनको रोका और उनको मना किया, आप मत बोलो। तो गुस्से में आकर सरस्वती ने कहा कि तुम पृथ्वी में जाकर वृक्ष का रूप धारण करोगी, उनको कहा लक्ष्मी देवी को। तो उसी समय लक्ष्मी या गंगा भी बहुत गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि तुम है सरस्वती, तुम नदी के रूप में बहोगी, बहते रहोगी और हजारों हजारों लोग आकर अपने पापों को तुम में छोड़ेंगे। तो उसी समय भगवान आते हैं और देखते कि क्या हो रहा है। तो फिर भगवान लक्ष्मी को बताते हैं कि वास्तव में ये मेरी अरेंजमेंट है। ऐसे नहीं कि वहां लड़ाई झगड़ा होता है वैकुंठ में, नहीं, वो तो हमारा लाभ, हमें लाभ प्रदान करने के लिए भगवान की ये योजना है। तो लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम अपना एक विस्तार के रूप में इस जड़ जगत में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और वहां मेरी पत्नी बनोगी, मेरी भार्या बनोगी और सारा जगत आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपकी सेवा करेगा और आप में इतना सामर्थ्य होगा कि देवतागण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण आपके चरणों में गिरेंगे, आपकी सेवा में नियुक्त होंगे, आपको प्रणाम अर्पित करेंगे, आपकी स्तुतियां करेंगे और मैं कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें आपका पत्र नहीं हो, आपकी मंजरी नहीं हो। हाँ, तो इस प्रकार से लक्ष्मी को भगवान कहते हैं और वही जो लक्ष्मी देवी है उनका ही विस्तार इस जड़ जगत में तुलसी के रूप में प्रकट होता है। तो और भी पुराण में कई सारे कथाएं हैं जिनमें यह वर्णन आता है कि किस प्रकार से वही तुलसी इस जगत में शंखचूड की पत्नी के रूप में प्रकट हुई या फिर जालंधर की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। और एक लीला आता है धर्मदेव एक ब्राह्मण थे उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई। और एक आता है कि तुलसी इस जगत में कैसे प्रकट हुई, जब चार प्रकार से उनका प्राकट्य है इस जगत में अलग अलग समय में। तो जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, देवता असुर उसका मंथन कर रहे थे, तो उस समय कई सारी चीजें उसमें से निकली, कहां से, क्षीर सागर से। लक्ष्मी भी वहां से निकली है, कौस्तुभ मणि, उच्च श्रवण, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, बहुत सारी चीजें निकली। और जब उस मंथन में क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, असुर और देवता मिलकर कर रहे थे, तो उसमें से एक विशेष चीज अमृत निकला। और जैसे अमृत का कलश ऊपर आया, वो ले आए, तो भगवान कृष्ण ने या विष्णु ने जैसे देखा तो उनकी आंखों से आनंद के अश्रु गिर पड़े उस कलश के ऊपर। और जैसे गिरे तो उसमें से तुलसी का जन्म हुआ, तुलसी का पौधा क्या हुआ, उगाया। इसलिए तुलसा अमृत जन्मसी कहा गया है कि तुलसी कहां से प्रकट हुई है, अमृत से। तो तुलसी के जो शरणागत होता है उसका जीवन भी एक प्रकार से अमृत में हो जाता है। इसलिए जो वृंदावन में गोपियां हैं वो किसी और की इतनी स्तुति नहीं करती जितना तुलसी की वो स्तुति करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे तुलसी, आप कृष्ण की बहुत अधिक बहुत बड़ी प्रिय हो, भगवान गोविंद सदैव आपके बिना निवास नहीं करते हैं, गोविंद सदैव आपने आपके छाती में धारण करते हैं माला के रूप में, अपने चरणों में आपके पत्र को धारण करते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे तुलसी, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप क्या करो, मुझे हम सबको यही आशीर्वाद प्रदान करो कि हम कृष्ण की प्राप्ति कर सके। और वास्तव में कृष्ण को अपने जीवन में तीव्रता से लाना है तो व्यक्ति को तुलसी की सेवा करनी चाहिए। हाँ, हम देखते हैं शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण आते हैं। शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, इवन जो शिवजी है, महादेव है, वो एक भी दिन अपना जाने नहीं देते पार्वती और शिवजी, जो तुलसी की सेवा के बिना नहीं रहते। एक बार जो का तुलसी के बारे में पार्वती ने पूछा, शिवजी को पूछा, पुराणों में वर्णन आता है कि हे महादेव, मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं अपने सखियों के संग में पुष्प चयन आदि करती हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, स्वयं तुलसी तोड़ते हैं, चयन करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं। महादेव किसकी सेवा करते हैं, कृष्ण की। निरंतर शिवजी और पार्वती कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा ये देखती हूँ कि आप हर रोज बिना भूले तुलसी का चयन करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको तुलसी अर्पित करते हैं, कई सारे उनके नामों का उच्चारण करते हुए है, तो आप मुझे तुलसी की महिमा के बारे में बताओ। तो ये जब पार्वती से उन्होंने सुना तो जो शिवजी है कई प्रकार की जो महिमा है वो बताने लगे। वो उन्होंने कहा तो जो शिवजी हैं वो कहने लगे पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मैं यदि अपने पांचों मुखों से भी तुलसी का वर्णन करूंगा तो भी किया नहीं जा सकता। और फिर शिवजी बोलने लगे, उन्होंने कहा, तुलसी वन जथाय विद्यमान राय, शोकत रोग शोकता पत्रय तथा नाही हाय। उन्होंने कहा जहां जहां ये तुलसी निवास करती है वहां किसी भी प्रकार का तापत्रय वास्तव में वहां निवास नहीं कर सकता। और जहां जहां जिस व्यक्ति के नासा में मतलब नाक में तुलसी की सुगंध प्रवेश करती है उसके जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। बल्कि तुलसी इतने पावरफुल है कि उसका सुगंध ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति सत्व गुण में आता है। कौन से गुण में आता है, हाँ, कोई व्यक्ति बहुत रजोगुण परेशान कर रहा है, तमोगुण परेशान कर रहा है, तो तुलसी के सामने जाओ, तुलसी को निरंतर देखते रहो। जैसे गाय को आप निरंतर देखते हो तो आप कभी गुस्सा नहीं होंगे, हमेशा सत्व गुण में रहोगे। तो तुलसी को आप देखते रहो निरंतर तो आप तुरंत ही सत्व गुण में आओगे। हाँ, सत्व गुण में आकर आपका भगवत भक्ति करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। और शास्त्र फिर महादेव शिवजी बहुत सारा गुणगान बताते हैं, फिर पार्वती तुलसी की सेवा करना शुरू करती है। इतना सीरियसली पार्वती ने तुलसी की सेवा की कि साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और पार्वती को तुलसी के 108 नाम प्रदान करते हैं। और पार्वती सदैव तुलसी की सेवा करती है और उनको प्रार्थना करती है कि हे तुलसी महारानी, मुझे सदैव कृष्ण के चरणों में जो अहेतु की भगवत भक्ति है वो आप मुझे प्रदान कीजिए। जिसके लिए जो पार्वती है सदैव तत्पर रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो तुलसी की सेवा है वो सारे सेवाओं में एक प्रकार से सर्वोत्कृष्ट है। भगवान का आकर्षण आप तुरंत अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो। जैसे दक्षिण भारत में एक राजा थे, राजा चोल, चोला डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो दक्षिण भारत में एक शहर है कांचीपुरम। कांचीपुरम आज भी आप जाते तो बहुत सारे 200 से अधिक मंदिर हैं, बड़े बड़े जगन्नाथपुरी के जैसे मंदिर, बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। तो वहां राजा चोल भगवान के महान भक्त थे। अरे राजा जो चोल है वो रोज वहां एक विग्रह है जिनका नाम है अनंत पद्मनाभ, शेष शाही भगवान शेष नाग पर लेटे हुए हैं चतुर्भुज विष्णु के रूप में या नारायण के रूप में। तो ये जाते थे राजा और बहुत सारे सोने अलंकार आदि से उनकी सेवा करते थे, उनको अलंकार ड्रेसेस आदि पहनाते थे और उनको देखते रहते थे और वापस आते थे। तो एक दिन इस राजा ने क्या देखा कि राजा सुबह सुबह गया, उन्होंने बहुत सारे सोने गहने अलंकार भगवान को पहनाए और फिर जब वो बाहर निकलने वाले थे तो एक भक्त अंदर घुस रहा था अल्टर के अंदर, जिनका नाम था विष्णुदास। क्या नाम था? विष्णुदास। वो विष्णुदास के हाथों में तुलसी ही तुलसी थे, तुलसी की माला, तुलसी के बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज को लेकर जा रहे थे। और जाकर उन्होंने क्या किया, तुलसी भगवान के चरणों में शरीर में अर्पित करना शुरू की, तुलसी की मालाएं आदि भगवान को उन्होंने पहनाए, धारण करना शुरू कर दी। भगवान, कोई व्यक्ति तुलसी अर्पित करता है, भगवान कहते विकृते स्व आत्मानं भक्तो भ्य भक्त वत्सलः। कोई व्यक्ति थोड़ा जल और एक पत्ता तुलसी अर्पित करता है, भगवान कहते वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है, मैं उस व्यक्ति का हो जाता हूं। तो यहां विष्णुदास ने जब इतने सारा तुलसी भगवान को अर्पित किया, उनकी स्तुति करने लगे, उनके नामों का उच्चारण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब नामों का उच्चारण करने लगे और तुलसी से वो राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं अभी अभी इतने सोने गहने हीरे मानिक के मोती जवाहरात ये सब भगवान को पहनाया और तुम आके तुलसी से ढक दिया सारा, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ पूछो इन सबको कि मैं तुमसे पहले मंदिर में आता हूँ, तुमसे अच्छी मैं सेवा करता हूँ। तो बहुत उन्होंने कहा तुम नेच हो, क्या तुम भक्ति करते, बहुत डांटने लगा राजा विष्णुदास को। हाँ विष्णुदास ने कहा आपको केवल अपने इस कार्य का अहंकार हुआ है, अहंकार अहंकार के कारण व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। तो ऐसे अहंकार वश राजा चोल वहां से चले गए और ये उन्होंने कहा तुम अपने जीवन में कुछ करते नहीं है, क्या तुमने कभी मंदिर बनवाए हैं, यज्ञ किए हैं? तो क्योंकि राजा के पास तो धन है, तो धन के द्वारा उन्होंने तो बहुत चीजें की थी, लेकिन विष्णुदास के पास कौन सा धन था? तुलसी रूपी धन। कौन सा धन? तुलसी। तो विष्णुदास तुलसी के माध्यम से भगवान की सेवा करते थे। और फिर ये गए गुस्से में राजा निकलकर और उन्होंने एक ऋषि मुद्गल को लिया और कई सारे यज्ञ करने में लग गए। और यहाँ जो विष्णुदास हैं ये भी भगवान की सेवा, तुलसी की सेवा करने लगे, तुलसी का गुणगान आदि और भगवान की सेवा करने लगे। इतने निमग्न हो गए विष्णुदास कि एक बार वो अकेले रहते थे तो उनको अपना प्रसाद खुद बना के वो बनाकर भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर में जाते थे। तो एक दिन भोजन बनाकर जब गए वापस आके देखा कि उनका भोजन गायब है, प्रसाद उनका गायब है, कोई ने किसी ने चुरा लिया है। तो उस समय ऐसे एक दिन नहीं 7 दिन बीते। कितने? 7 दिन भूखे रह सकते हम? नहीं। हम एक दिन हमारे लिए एकादशी आता है तो लगता है कहां पहाड़ ऊपर से गिर रहा है, तो हमारे लिए बहुत कठिन है तपस्या कलियुगा के लोगों के लिए। तो फिर विष्णुदास ने सोचा मैं अभी क्या करता हूं, देखता हूं कौन व्यक्ति है जो इसको चुरा रहा है। तो विष्णुदास आए और एक दरवाजे के पीछे खड़े रहे अपना भोजन बनाने के बाद, तो देखा एक ऐसा दुबला पतला व्यक्ति, ठीक से वस्त्र उसके शरीर पर नहीं है, हाँ बहुत ही मतलब अभी गिरने वाला है या मरने वाला है या जिसको कभी भोजन नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति आया उनके किचन से वो उठा के भाग ही रहा था। तो उनको देखकर इनके हृदय में दया का भाव आया विष्णुदास के, विष्णुदास भी उसको आवाज दिया विष्णुदास ने कि अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, सूखी रोटियां लेकर हाँ थोड़ा घी भी लेके जाओ। और ये भी बोल ही रहे थे तो वो बेचारा इतना डरा था कि अरे मुझे किसी ने देख लिया, वो जाके मूर्छित होकर गिर पड़ता है थोड़ी दूरी पर। और विष्णुदास उनके पास जाते हैं, विष्णुदास जाते हैं और सोचते कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, हाँ कि एक व्यक्ति शायद शरीर त्याग रहा है। तो विष्णुदास ने जो व्यक्ति गिरा था उसका जो सर है अपना हाथ उनके नीचे रखा, अपना ऊपर का जो वस्त्र है उत्तरिया उसे वो फैनिंग करने लगे, हवा डालने लगे और मुख को देखने लगे। ये देख रहे थे तो वो जो व्यक्ति है उसने अपना स्वरूप बदला और वो भगवान कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। उन्होंने कहा है विष्णुदास आपकी ये जो सेवा है तुलसी के माध्यम से मुझे इतना तुमने आकृष्ट कर लिया है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारे संग के बिना। तो इस प्रकार से भगवान बहुत उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति वास्तव में तुलसी की सेवा को स्वीकार करता है। तो तुलसी के माध्यम से वो कृष्ण का प्रिय बनने लगता है, कृष्ण का वो अपना बनाता है। कृष्ण को आप परचेज कर सकते हो, कृष्ण को आप खरीद सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो भगवान है उस व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं। द्वारका की उस लीला को पिछली बार भी सुना था, जब सत्य भामा हमेशा सोचते थे कि इतनी सारी हम रानियां हैं, कितनी रानियां हैं? 108। सत्य भामा बहुत पावरफुल रानी थे, उनका नेचर कंट्रोल करने की नेचर था। तो सत्य भामा ने सोचा ये जो कृष्ण है ये मुझसे ही सर्वाधिक प्रेम करे, बाकियों से कम। तो उन्होंने सोचा कुछ योजना ढूंढनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा नारद बारंबार आते हैं, उनके पास सारे प्रश्नों के उत्तर है। नारद को कुछ भी पूछो उनके पास सारे उत्तर तैयार रहते हैं, सब फॉर्मूलाज उनके पास है। वो नारद को पूछते सत्य भामा कि नारद जी आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे दीक्षित किया है, मेरी एक समस्या है। तो नारद ने पूछा बताइए समस्या किसके पास नहीं है जगत में? जिसने भी ये शरीर धारण किया है उसके पास समस्या ही समस्या है, कष्ट ही कष्ट है, विपदा ही विपदा है। तो नारद ने कहा बताओ बताओ सत्य भामा क्या तुम्हारी समस्या है? तो सत्य भामा ने कहा मेरी तो समस्या एक ही है कि कृष्ण सर्वाधिक मुझसे प्रीति करे, किसी और से नहीं। तो फिर नारद ने कहा उसके लिए एक चीज, एक तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। वो व्रत क्या है? बड़ा सरल है। उस व्रत में तुम्हें कृष्ण को मुझे दान में देना होगा। क्या करना होगा? कृष्ण को मुझे दान में देना होगा और कृष्ण को दान में देकर उसी क्षण तुम उनको वापस ले लो। अपने सारे जो गोल्डन ज्वेलरी है, ज्वेलरी है वो अर्पित करके फिर उनके नाप की उतना ही वेट उसका हो जितना वेट कृष्ण का है, तो उतना ही वेट उस सोने का हो जो तुम्हारे पास है, तुम वापस ले सकती हो। तो उन्होंने कहा बहुत सरल है। सत्य भामा ने कहा ये तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास इतने सारे महल हैं, इतना धन है, द्वारका तो सुवर्ण नगरी है। तो फिर भगवान भी तैयार हो गए, भगवान जानते थे कुछ शिक्षा देना चाह रहे थे सारे जगत को। तो भगवान को उन्होंने दान में दे दिया और नारद ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और निकलने लगे। तो सत्य भामा कहते रुकिए रुकिए जाइए मत, बल्कि बाकी सारी रानियों ने कहा था ऐसे मत करो, ये उचित नहीं है। लेकिन सत्य भामा के आगे किसी की चलती नहीं है, सब उनसे डरते हैं। तो सत्य भामा ने जब नारद को दान में कृष्ण को दे दिया, कृष्ण का हाथ पकड़कर, अभी नारद की प्रॉपर्टी है, कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है? नारद की। तो नारद का मतलब है कि ना का मतलब है, नार का मतलब है नारायण और द का मतलब है देने वाला। तो नारायण को जो किसी को भी दे सकते हैं उनको नारद कहा गया है। या तो ऐसे नारद को उन्होंने कहा कि नहीं मुझे वापस चाहिए कृष्ण। तो उन्होंने कहा सत्य भामा तुम्हें एक क्या कहते हैं तराजू लाना होगा, उसको कहते तुला भरण। आप जाएंगे बालाजी का दर्शन करने तिरुपति, तो वहां जब बालाजी का दर्शन करने जाते हैं अंदर सारे कितने घंटे लाइन में आप खड़े रहते हैं, फिर अंदर जाते तो एक सेक्शन आता है जहां तुला रखा है जिसमें आप अपने वेट का चावल और कई चीजें भगवान को दान कर सकते हैं। तो उसको तुला भरण कहते हैं, दक्षिण भारत में बहुत होता है सारे मंदिरों में, बल्कि पूना मंदिर में भी पिछले मैराथन में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मंदिर के अंदर बड़ा तराजू लाके रखा और एक और एक व्यक्ति बैठता था, उसके वेट का गीता इधर होता था, वो गीता स्पॉन्सर क्या था आप भी सोच सकते हैं। कितने अच्छे चीज है कि अपने वेट का गीता दान करो मेरा धर्म में, तो लोग अपने बच्चों को ले आते थे छोटे छोटे, बच्चे का वजन कितना है। इतना सक्सेस, लाइन लग गई थी, कितने मैं भी 500 से अधिक लोगों ने ये किया पूना में, कितने सारे लोग लाइन में खड़े थे, पूरा फैमिली आता था, सब वो तराजू में बैठ जाते थे, वो डिवोटीज बॉक्स वहां रखे थे, गीता रख देते थे और उतनी गीता फिर बांट देते थे उनके नाम से। तो भगवान के भक्त बहुत चतुर है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं गीता का वितरण करने के लिए। तो ऐसे ही भगवान नारद ने कहा तू तराजू लेके आओ, लाया तराजू, एक और कृष्ण को रखा और सत्यभामा को कहा कि आप लाओ सारी चीजें निकालो अपनी, जो भी कंगन आदि है सब डालो। उसने जितना सोना डाला कृष्ण की बराबरी नहीं हो रही थी, कृष्ण हमेशा बहुत भारी थे। तो फिर सत्यभामा परेशान हो गई, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अभी कृष्ण कहने लगे देखो अभी तो मुझे नारद के साथ जाकर गाय चरानी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नारद का सेवक बनना पड़ेगा यदि तुम मुझे नहीं छुड़ाओगी। तो सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं हम प्रयास कर रहे हो। तो उसी समय सत्यभामा को रुक्मिणी का स्मरण आया, और रुक्मिणी क्या करती थी, वो अपना समय व्यतीत नहीं करते थे। जब भी रुक्मिणी को समय मिलता था या तो कृष्ण के साथ कथा श्रवण करती है रुक्मिणी, या तुलसी की सेवा करती है। रुक्मिणी के ये दो काम है। तो रुक्मिणी उसी समय ये सब बाहर दूसरी ओर हो रहा था, और रुक्मिणी उस समय तुलसी सेवा कर रही थी, तुलसी की पूजा प्रेयर्स गा रही थी तुलसी के लिए। और तो उस समय सत्यभामा जानती है, कहते कि मैं एक समस्या में हूं तो आप उसका समाधान कीजिए। तो रुक्मिणी आती है वहां और नारद को देखती है, और नारद को कहती है कि ये जो कृष्ण नाम है ये कृष्ण के ही समान है, ये मैं एक और रखना चाहती हूँ। नारद ने कहा नाम है कृष्ण के समान, लेकिन नाम दिखता थोड़ी है, दिखता है क्या नाम, नहीं दिखता, वो चलेगा नहीं, जो दिखने वाली वस्तु है वो आप रखना अलाउड है, कुछ भी जो दिखने वाली है। तो नारद ने जैसे कहा, तो रुक्मिणी बहुत चतुर थे, रुक्मिणी तुरंत जाते दौड़ते हुए और तुलसी को प्रणाम करके तुलसी का एक पत्र लेके आती है पत्ता, और लाकर क्या करती है, जैसे रखती है कृष्ण तुरंत ऊपर हो जाते हैं, इतना भारी है एक पत्र, कृष्ण को खरीद ले सकते हो आप। तो नारद सत्यभामा सब लोग आश्चर्यचकित हो गए रुक्मिणी की इस बुद्धिमता के कारण। तो इस प्रकार से शास्त्र इन सारी घटनाओं का वर्णन इसलिए करते हैं कि इन घटनाओं के द्वारा पानी है, तो इन घटनाओं के द्वारा हमें इस चीज की शिक्षा प्राप्त हो। कौन सी शिक्षा, कि भगवान की जो सरल प्राप्ति है, भगवान का भगवान को हमारी ओर आकृष्ट करना है तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है, भगवान के जो प्रिय भक्त है तुलसी है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रार्थनाएं गानी चाहिए। तुलसी की अधिक से अधिक सेवा करते हैं, केयर करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, जहां जहां जिस स्थान में तुलसी फलती फूलती है बहुत अच्छी, जो तुलसी का पौधा है, तो वहां समझना चाहिए कि वहां क्या है, भगवत भक्ति बढ़ रही है उस स्थान में, उस ग्रह में, उस व्यक्ति के हृदय आदि में। तो पता चल जाता है किसी के आप ग्रह घर में जाते हो या किसी स्थान में, कि जहां तुलसी फल तुलसी का केयर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, हाँ तो समझना चाहिए कि वास्तव में यहाँ के लोगों के हृदय में डिवोशन है, भक्ति का वास है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण के जो प्रिय है उनके टेक केयर करना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा ड्यूटी है एक प्रकार से। जब हम उनको सर्व करते हैं तो तुलसी और अधिक सुंदर होने लगती है, और जिसके द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुलसी महारानी को क्या कहा गया है, महाप्रसाद जननी। क्या कहा गया है, वैसे देखा जाए तुलसी नहीं है तो हम भूखे मर जाएंगे भक्त, नहीं अभी प्रसाद अर्पण करना है भगवान को तभी खाएंगे, तुलसी नहीं है तो फिर क्या क्या उपाय है। तो वो सारा जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, एक प्रकार से हम सोचे एक एंगल से कि तुलसी पर निर्भर है। भक्तों को भक्त अपने आप को डेकोरेट करते हैं, कैसे तुलसी को धारण करते हैं। यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुलसी कंठ में धारण की है उनको मत ले आना मेरे पास, जो तुलसी की सेवा में रत है। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उस समय श्रील प्रभुपाद के गले में तुलसी माला देखी तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपने क्या पहना है? प्रभुपाद ने कहा, ये वो चीज है जैसे गले कुत्ता होता है ना, कुत्ता तो कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, पट्टा बांधता है कोई, तो जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसका मतलब उसका कोई मालिक स्वामी है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है उसका मतलब उसका कोई स्वामी मालिक नहीं है, कोई भी उसको आकर लात मार रहा है, पत्थर मार रहा है, भगा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अनाथ नहीं है, हम कौन है? सनाथ है। हाँ, तो जब ये भक्तों का वेशभूषा है तुलसी को धारण करना, तुलसी के जो माला है उस पर हरि नाम का उच्चारण करना, बल्कि तुलसी के संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति भक्त हो जाता है। रशिया में एक फैमिली है, ऐसे कई स्टोरीज है रशिया कई मंदिरों में। रशिया में एक परिवार था जो इस्कॉन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो वो उस फैमिली के जो गार्डन है, बहुत रिच लोग थे तो उनका गार्डन था, उसमें बहुत सारे पौधे थे, लेकिन उस पौधों में एक तुलसी का पौधा था और वह किसी को पता नहीं है कि यह तुलसी कोई आध्यात्मिक वस्तु है, भगवान की प्रिय है या कुछ। अभी रशियंस तो उनको क्या पता क्या है, और वो इससे कनेक्टेड नहीं थे, भगवत भक्ति आदि से। लेकिन उस घर की जो माता जी है वो अपने गार्डन में कोई पौधा उसको आकर्षित करता था, वो तुलसी का था, उसको पता नहीं कि ये क्या है। वो पौधा हमेशा आकर्षित करता था और वो जाकर उसकी सेवा करती रहती थी, सेवा करती रहती, सेवा मीन्स उसका टेक केयर करना, पानी देना, उसको ठीक से जल आदि कीड़े वगैरह ना हो ये सब करते रहना। उसको लगा एक प्रेम सा महसूस होने लगा उसको, और वो बहुत ये हो गई, आसक्त हो गई। फिर एक बार उसका जो बेटा है वो कहा शहर में जा रहा था अपनी किसी कार्य के लिए, तो ये हरे कृष्णा डिवोटी जा रहे थे रस्ते में कीर्तन करते हुए और पुस्तकों का वितरण करते जा रहे थे। अब इस उस लड़के को एक बुक मिली प्रभुपाद की, और बुक लाके वो पढ़ने लगा, तो पढ़ने लगा तो उसमें एड्रेस था मंदिर का, वो गया मंदिर गया तो वहां जो भी सेंटर होगा वहां रशिया में, वहां देखा कि जिसमें पूजा करते आल्टर उसमें वो पौधा रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है, ये पौधा तो हमारे घर में बहुत सारे हैं, ये लोग इस पौधे को ऊपर रख के पूजा कर रहे हैं। फिर उसको पता चला, बल्कि उसको पता चला कि ये कोई सर्वसाधारण पौधा नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने किसी प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी प्रभुपाद क्या हम इसको एक पौधा कह के पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक पौधा है? प्रभुपाद ने कहा तुम कभी भी तुलसी को नहीं समझ सकते, तुलसी भगवान की शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्तों को समझने के लिए आपको भी शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। शुद्ध भक्तों को हम अपने भौतिक आंखों से निम्न छोटी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। शुद्ध भक्त की पहचान के लिए केवल शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में निवास करेगी, तभी हम पहचान सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे लिए तुलसी अचिंत्य है, तुलसी को आप जान नहीं सकते। एक बार प्रभुपाद एक लॉस एंजलिस टेम्पल में लेक्चर दे रहे थे, तो आप प्रवचन के बाद जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा तुलसी कहाँ है? तो डिवोटीज ने कहा बाहर है। तो तुरंत एक भक्त तुलसी का पौधा लेके आ गया, पौधा लाया तो प्रभुपाद ने तुरंत प्रणाम किया और माला लाकर उनको तुलसी महारानी को पहनाए और कहा कि आप सदैव कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी तुलसी को नेग्लेक्ट मत करो। प्रभुपाद ने कहा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम तुलसी की परिक्रमा ना करें, और तुलसी को जल दिए बिना प्रभुपाद ने कहा हमें कुछ खाना नहीं चाहिए सुबह, खाने से पहले ये कार्य हो जाना चाहिए, तुलसी को जल अर्पित करना। बहुत छोटा कार्य है लेकिन इसका लाभ क्या है, बहुत बड़ा है। यही तो आध्यात्मिक जीवन है। कि लगता है कि बहुत छोटा कार्य है लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। चैतन्य महाप्रभु का तुलसी के प्रति बहुत अधिक प्रीति था। चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में निवास करते थे अपने गृहस्थ जीवन में भी, तो भी उनका एक दिनचर्या में रोज सुबह उठकर अपने सारे भक्तों के संग में गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु जब घर आते थे तो सबसे पहले तुलसी की परिक्रमा करते थे, जल देते थे, प्रेयर्स प्रार्थनाएं बोलते थे, प्रणाम आदि करते थे। महाप्रभु कहते हैं कि मेरा जीवन तो वैसे ही हो जाता है, जिस दिन मैं तुलसी को ना देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है उस प्रकार से मैं तड़पने लगता हूं। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु। इतना अनुराग है तुलसी के प्रति। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में संन्यास लेकर निवास कर रहे थे तो उस समय वो हमेशा अपना जो जप है तुलसी के सामने करते थे, तुलसी को देखते हुए। बहुत पावरफुल चीज है तुलसी के सामने हरि नाम का उच्चारण करना। शास्त्र कहते हैं तुलसी के सामने कृष्ण के संबंधित प्रार्थनाओं को आप गाते हैं, कृष्ण से संबंधित गीतों को आप उच्चारण करते हो तो कृष्ण बहुत अधिक आकृष्ट हो जाते हैं और उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। बल्कि श्रील प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि हमें तुलसी के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी देन प्रदान की है। तुलसी हमारे नजदीक होने से तीन चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, क्योंकि जहां तुलसी है वहां वृंदावन है। क्या है? जहां तुलसी है वहां वृंदावन है। और हम सदैव सोचते रहते हैं कि कहां शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, है ना। हम सोचते महान वैष्णव कोई हो उनकी सेवा कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन प्रभुपाद ने तुलसी रूपी शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रदान किए, सरल। और तीसरी चीज क्या है? तुलसी का जो मिट्टी है वो सर्वसामान्य मिट्टी नहीं है, मृत्तिका जिसको कहते हैं। तुलसी का जो मिट्टी है वो साक्षात वृंदावन की धूली है। क्या है? वृंदावन की रज है। कोई व्यक्ति वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाता है, हाँ, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये जो तुलसी की जो मिट्टी है रोज हमें धारण करनी चाहिए। तो ये भगवत भक्ति के अंग है। भगवत भक्ति करने के लिए ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब अपना जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो चैतन्य महाप्रभु सदैव तुलसी के सामने जप करते थे। तुलसी के सामने जप करने से एक तो बहुत अधिक आप अटेंटिव हो जाते हो और कृष्ण नाम आपके जिह्वा से स्वाभाविक निकलने लगता है। क्योंकि तीन प्रकार के भक्त है, एक है कभी कभी जप करता है, दूसरा है हमेशा जप करता है, तीसरा है जिसको देखने मात्र से कृष्ण नाम दूसरे के जिह्वा से निकलता है। कितने प्रकार के भक्त है? एक है जो कभी जप करता है, दूसरा है हमेशा, और तीसरा है जिसको देखने मात्र से भगवान का नाम हमारे जिह्वा से स्फुरित होने लगता है। तुलसी महारानी का विशेष गुण है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब करते थे तो तुलसी के सामने, और जब चैतन्य महाप्रभु को चलते हुए जब करना होता था तो एक भक्त को तुलसी को ऐसे लेकर वो चलता था और तुलसी चैतन्य महाप्रभु उनके सामने चलते हुए उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं। तुलसी के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये विशेष शिक्षा हमें प्रदान की है। जब अद्वैत आचार्य 500 साल पहले बंगाल में नवदीप मायापुर में अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये कलियुगा के लोग बहुत अधिक नीच प्रवृत्ति के हो गए हैं, ये जड़ बुद्धि के हो गए हैं, इनके जीवा में भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, बाकी हमारी जीवा मेंढक के भांति हमेशा दिन भर टर-टर करती रहेगी, बिजनेस की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, पॉलिटिक्स, निंदा, ये सब चीजें जीवा हमेशा बोलती रहेगी। और जब कहा जाए जरा कृष्ण के बारे में बोलो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो जीवा बिल्कुल बंद हो जाती है, जड़ हो जाती है, मोटी हो जाती है। होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं बड़ी मोटी मोटी जीवा के होते हैं और बोला नहीं जाता उनसे, तो हमारी स्थिति वैसी ही है। तो ऐसे कलयुग के लोगों की दयनीय स्थिति जब अद्वैत आचार्य ने देखी तो उनको लगा इन लोगों का उद्धार किसी से नहीं होगा, इनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना चाहिए। जैसे कभी कभी व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, वो कहते हैं भगवान ही इनको सुधार सकता है, कोई और नहीं सुधार सकता। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कलयुग के लोग सुधर ही नहीं सकते, उनको स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो भगवान कैसे आएंगे कलयुग में, तो भगवान का अवतार नहीं है, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो ऐसे अद्वैत आचार्य जब एक ग्रंथ पढ़ रहे थे गौतमीय तंत्र, तो उस गौतमीय तंत्र में उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, वो श्लोक क्या था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेते स्व आत्मानं भक्त्योभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, कोई व्यक्ति तुलसी का थोड़ा दल या पत्ता और जलस्य चुलुकेन वा अपनी मुट्ठी भर के जल भी भगवान को अर्पित करता है तुलसी के साथ, तो भगवान क्या करते हैं, विक्रीणेते स्व आत्मानं, अपने आप को बेच देते हैं, उस व्यक्ति के हो जाते हैं। हाँ, तो जब अद्वैत आचार्य ने देखा तो अद्वैत आचार्य ने अपने जीवन में रोज ये शुरू किया, रोज तुलसी अर्पण करना भगवान को, थोड़ा जल अर्पण करना शालिग्राम शिला को, और फिर भगवान उनके इस भावना से, उनके इस भेंट से कलियुगा में अवतरित हो जाते हैं। किसके रूप में अवतरित होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किसके रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में इस प्रकार से अवतरित करवाया अद्वैत आचार्य ने, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो इस प्रकार से तुलसी की तो अनंत महिमा है, जिसका वर्णन शास्त्रों में कई स्थानों में हमें पढ़ने को मिलता है, और कोई व्यक्ति तुलसी के संपर्क में आता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ये भगवत भक्ति का एक अंग है तुलसी की सेवा करना। तुलसी की सेवा कैसे कर सकते हो, रोज तुलसी को प्रणाम करके, तुलसी को जल अर्पित करके, तुलसी का केयर करके, उनको ध्यान रखकर, उसकी मंजरी आदि किस प्रकार से हमें तोड़नी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए, और फिर हमें तुलसी की सेवा करनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम तुलसी की सेवा करेंगे तो हम चाहे जितने मर्जी पतित क्यों ना हो, जैसे हरिदास ठाकुर निरंतर कृष्ण नाम लेते थे, तो ऐसे हरिदास ठाकुर का आप पदच्युत करने के लिए एक उस समय रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति एक वेश्या को भेजता है, तो हरिदास ठाकुर सदैव हरि नाम का जप करते थे, निरंतर कृष्ण नाम लेते रहते थे दिन रात। तो जो वेश्या है गलत भावना से उस हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है, और उस समय वो एक चीज करती है अनोइंगली, क्या जाती है भक्ति का दिखावा करती है, और वो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है, और हरिदास ठाकुर हमेशा तुलसी के सामने जप करते थे, तुलसी को प्रणाम करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है जो उनकी कुटिया के बाहर थी। तो ये चीज वो वेश्या 3 दिनों तक कंटिन्यूअसली करती रहे, उसका हृदय शुद्ध हो गया तुलसी के संपर्क में आने से, और उन्होंने हरिदास ठाकुर की शरण ग्रहण की, और उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवान, आची रात पावे तुम्हें श्री कृष्ण चरण। 2 चीजें हरिदास ठाकुर ने कही कि आप यदि कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना चाहती हो तो क्या करो, 2 चीजें करो, निरंतर नाम लो, निरंतर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे,
निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा, और तुलसी की सेवा करो। ये 2 कार्य करने से क्या होगा, आची रात पावे तुम्हें श्री कृष्ण चरण, आचिरात मतलब बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही आप श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करोगे। और चैतन्य चरितामृत में इस घटना को बहुत विस्तार से वर्णित किया है, जिसमें आता है कि उस वैष्णव यही दो चीजों को अपने लाइफ में पकड़ा, हरि नाम का उच्चारण करना, तुलसी की सेवा। इतनी महान वैष्णवी बने कि दूर दूर से हजारों लोग आते थे उनसे ये चीजें सीखने के लिए, इतनी महान। तो इस प्रकार से चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, हम चाहे जितने मर्जी पतित क्यों ना हो, हम जितने मर्जी दुर्गुणों से भरे क्यों ना हो, लेकिन भगवान का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली है। और भगवान का पवित्र नाम जो भगवान से अभिन्न है, और दूसरा जो तुलसी महारानी है जो भगवान की सर्वाधिक प्रिय है, हाँ, तो इनके सेवा हम निरंतर करते रहेंगे तो हम सरलता से भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है, वो हमारे हृदय में बहुत जल्दी धारण कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र तुलसी की महिमा का कई स्थानों में वर्णन करते हैं, और तुलसी को हमें अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति तुलसी की सेवा को गंभीरता से लेता है तो कृष्ण भी उस व्यक्ति को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, कृष्ण भी उस व्यक्ति को अपना बनाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से तुलसी का वर्णन किया जा सकता है या समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। वृंद देवी तुलसी महारानी की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
अभी थोड़ा सा और लंबा करना है लेक्चर, चढ़ लेट तक करना क्योंकि अभी लोग आए नहीं, अभी काफ़ी लोग आना है, टाइमिंग थोड़ा सा लंबा बढ़ाना था, दामोदर जी का प्रोग्राम थोड़ा लंबा करना था, लेक्चर थोड़ा सा नहीं, वो तो पहले डेली के रूटीन का प्रोग्राम का है, आज लेट था थोड़ा, सवा सात साढ़े सात रिसेप्शन का प्रोग्राम था,
अभी हम कुछ गा लेते हैं।
हाँ, कुछ और कर लेंगे,
भजन थोड़ा
कीर्तन तो लाख में हो ही जाएगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा सा हो जाए,
लेक्चर में क्या
और कुछ ऐड कर,
थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, आप लोग आ जाओ।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वृंद देवी तुलसी महारानी की, हरि नाम संकीर्तन की जय। हम सब थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, तो आप सब लोग कीर्तन में भाग लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Thank you. Thank you.
संकीर्तन की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंद देवी तुलसी महारानी की वृंदावन धाम के श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम हरे कृष्ण।